दिन भर 13 मई रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर कथित रूप से विदेशों में मौजूद अवैध संपत्ति की जानकारी छिपाने के आरोप पर हमलावर हुई बीजेपी।
पाकिस्तान के नवाज शरीफ का मोमेंट भारत देश में कांग्रेस पार्टी को आया है, लग रहा है ऐसे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो खुद बेल पर हैं, वो इसके ऊपर जांच करेंगे।
इंडोनेशिया के सुराबाया में 3 चर्चों पर आत्मघाती हमले में 11 की मौत। पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज की बेटी मोनिजा हाशमी का दावा, भारत दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोका गया।
मुझे आके ऑर्गेनाइजर्स ने जो AIBG की थे, उन्होंने कहा कि जी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी।
मोनिजा से और विषयों पर भी होगी लंबी बात, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार नवीन नेगी से। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर आयकर विभाग की चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुमान के मुताबिक चिदंबरम की 3 अरब डॉलर की संपत्ति विदेश में है। उधर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने चिदंबरम की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से की है। इंडोनेशिया की पुलिस के अनुसार आज सुबह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सुराबाया में 3 चर्चों पर हुए आत्मघाती बम धमाके में एक ही परिवार के लोग शामिल थे। इन धमाकों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक महिला और उनके 2 बच्चों ने खुद को एक चर्च के पास बम धमाके से उड़ाया। उसके बाद उस महिला के पति और उनके 3 बेटों ने अन्य 2 चर्चों के पास आत्मघाती बम धमाके किए। इस्लामिक स्टेट संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अगर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस साल 2015 में हुए परमाणु समझौते को बरकरार रखने की गारंटी देते हैं, तो वे परमाणु समझौते पर कायम रहेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमरीका को इस समझौते से अलग कर लिया था। तेहरान में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ सहयोगी समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय एक प्रेस वार्ता में हसन रूहानी ने कहा, अगर इस परमाणु समझौते में शामिल बाकी के 5 देश समझौते को बरकरार रखने का विश्वास दिलाते हैं, साथ ही वे ईरान के हितों का भी भरोसा दिलाते हैं, तो ईरान इस परमाणु समझौते से खुद को अलग नहीं करेगा, भले ही अमरीका ऐसा चाहता हो। ये थे ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पूर्वी अफगानिस्तान में एक सरकारी इमारत में हुए हमले में 9 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार जलालाबाद शहर में एक सरकारी इमारत में प्रवेश द्वार पर एक कार बम धमाका हुआ। उसके बाद कुछ हथियारबंद लोगों ने इमारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, जहां बंदूकधारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच गोलीबारी हुई। खबरों में बताया जा रहा है कि इस इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। अभी तक एक चरमपंथी के मारे जाने की सूचना है। किसी भी संगठन ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उत्तर कोरिया की तरफ से अपने परमाणु परीक्षण केंद्र को नष्ट करने की घोषणा के बाद कई देशों ने इसका स्वागत किया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बहुत ही समझदारी भरा और अनुकूल कदम बताया है। वहीं दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर कोरिया का यह कदम दर्शाता है कि वह पिछले महीने हुई बैठक को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा, उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि वह 23 से 25 मई के बीच पुंगेई री में स्थित अपने परमाणु परीक्षण स्थल को समाप्त कर देगा। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यह दिखाता है कि उत्तर कोरिया अपने वचन पर प्रतिबद्ध है और दोनों कोरियाई देशों के बीच हुई बैठक को गंभीरता से ले रहा है। ये थे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के प्रवक्ता के शब्द। पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज की बेटी मोनिजा हाशमी को उनके हालिया भारत दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में कथित तौर पर हिस्सा लेने से रोक दिया गया। मोनिजा हाशमी ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें नई दिल्ली में बीती 10 से 12 मई के बीच आयोजित एशिया मीडिया समिट के 15वें अधिवेशन में हिस्सा लेना था, लेकिन जब वे इस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान से दिल्ली पहुंची तो सम्मेलन के आयोजकों ने उन्हें इसमें हिस्सा नहीं लेने दिया। इस सम्मेलन का आयोजन एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD करती है। पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ है। मलेशिया में हाल ही में हुए चुनाव में जीत दर्ज करने वाले 4 राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद उभरने की खबरें आ रही हैं। जेल में बंद नेता अनवर इब्राहिम ने कहा है कि वे नई सरकार बनने से पहले और अधिक बातचीत करना चाहते हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सुराबाया में 3 चर्चों पर हुए आत्मघाती हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। ये धमाके स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे के आसपास हुए। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। साल 2005 के बाद इंडोनेशिया में हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस घटना पर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का ब्यौरा सुना रहे हैं नवीन नेगी।
इंडोनेशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सुराबाया में हुए आत्मघाती हमले के पीछे एक ही परिवार के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। रविवार को 3 चर्चों पर हुए आत्मघाती हमलों में अभी तक 11 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। इंडोनेशिया के पुलिस प्रमुख के मुताबिक एक महिला और उनके 2 बच्चों ने खुद को एक चर्च के सामने बम धमाके से उड़ा दिया। उसके बाद उस महिला के पति और उनके 3 बेटों ने अन्य 2 चर्चों पर आत्मघाती बम धमाका किया। सुराबाया में घटनास्थल का दौरा करने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच की जा रही है। जोको विडोडो ने कहा,
Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan pengecut semacam ini.
देश का प्रशासन इस तरह की कायरतापूर्ण घटनाओं की निंदा करता है। मैं समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे मिलकर चरमपंथ अतिवाद से लड़ने में साथ आएं। ये सभी हमारे धार्मिक और राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ हैं। हमारा देश ईश्वर और विविधता पर भरोसा करने वाला देश है। ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के शब्द। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों की योजना 4th चर्च में धमाका करने की भी थी, लेकिन उसे समय रहते रोक लिया गया। टेलीविजन पर आ रही तस्वीरों में एक चर्च के प्रवेश द्वार पर फैला मलबा देखा जा सकता है। हाल के दिनों में इंडोनेशिया में इस्लामी चरमपंथ फिर से उभरता हुआ दिख रहा है। धमाके में घायल हुए एक व्यक्ति की पत्नी ने मीडिया को बताया कि उनके पति की हालत गंभीर बनी हुई है। वहाँ काफी भीड़ थी और मेरे पति चर्च के दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो धमाका हो गया, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए। ये थे धमाके में घायल हुए एक व्यक्ति की पत्नी के शब्द। इंडोनेशिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि चरमपंथी गुट जमा अंशारुद दौलाह ने इन हमलों को अंजाम दिया होगा। ये गुट खुद को इस्लामिक स्टेट कहता है और ये चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से प्रेरित बताया जाता है। कुछ ही दिनों पहले इंडोनेशिया की जेल में बंद इस्लामी चरमपंथियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 5 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस्लामिक स्टेट संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। साल 2005 के बाद इंडोनेशिया में हुआ यह सबसे बड़ा धमाका है। उस समय बाली के एक रिजॉर्ट में हुए 3 आत्मघाती बम धमाकों में 20 लोगों की मौत हो गई थी। इस्लामिक स्टेट ने सबसे पहले जनवरी 2016 में राजधानी जकार्ता में हुए एक धमाके की जिम्मेदारी ली थी। उस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं साल 2002 में बाली में एक बार और नाइट क्लब में हुए 2 बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उन धमाकों की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े चरमपंथियों ने ली थी।
इंडोनेशिया में हुए आत्मघाती हमले की जानकारी दे रहे थे नवीन नेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर इस बात को लेकर निशाना साधा कि वो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कथित आर्थिक अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने विदेश में मौजूद अपनी संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की। उन्होंने इसे कांग्रेस के लिए नवाज शरीफ मोमेंट बताया, यानी कि एक तरह से चिदंबरम को कांग्रेस का नवाज शरीफ करार दिया। बीजेपी के इस हमलावर रुख पर पी चिदंबरम ने भी पलटवार किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कुलदीप मिश्र।
केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि वित्त मंत्री होते हुए भी चिदंबरम अपने परिवार के विदेश में किए गए निवेश को कैसे भूल गए। उन्होंने इस मामले की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से की, जिन्हें वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं के कारण चुनाव लड़ने से रोक दिया है।
पाकिस्तान के नवाज शरीफ का मोमेंट भारत देश में कांग्रेस पार्टी को आया है, लग रहा है ऐसे, क्योंकि उनके एक सीनियर वरिष्ठ मंत्री पी चिदंबरम साहब ने उनके विदेश में जो संपत्ति है उसका विवरण उनके अफिडेविट में नहीं दिया गया। इसके ऊपर इनकम टैक्स के द्वारा कार्रवाई हो रही है। ये सब विवरण मीडिया के द्वारा पब्लिश होते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ऐसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो खुद बेल पर हैं, वो इसके ऊपर जांच करेंगे? क्या इसके ऊपर उनके तरफ से कुछ टिप्पणी आएगा?
उधर चिदंबरम ने बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब ट्विटर के जरिए दिया है, मगर व्यंग्यात्मक रूप से। निर्मला सीतारमण को लेकर उन्होंने लिखा,
दिल्ली में चर्चा है कि निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री के पद से हटाकर आयकर विभाग का वकील नियुक्त कर दिया जाएगा। सीतारमण जी, आपका बार में स्वागत है।
ये था पी चिदंबरम का ट्वीट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी चिदंबरम को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आयकर विभाग का अनुमान है कि यूपीए के वित्त मंत्री की अवैध संपत्ति $3 बिलियन तक हो सकती है, और इससे ये भी पता चलता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद यूपीए ने काले धन को लेकर SIT क्यों नहीं बनाई। मगर चिदंबरम ने अमित शाह पर चुटीली टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर लिखा,
भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष $1 बिलियन के ख्वाब देख रहा है। इस पैसे को वापस लाइए और अपने वादे के मुताबिक हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दीजिए।
ये था पी चिदंबरम का ट्वीट। शुक्रवार को आयकर विभाग ने चिदंबरम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चेन्नई में एक विशेष अदालत में ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत 4 आरोप पत्र दाखिल किए थे। इसके बाद से बीजेपी ने इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है।
कुलदीप मिश्र जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पी चिदंबरम की कथित आर्थिक अनियमितताओं को लेकर हमलावर हो गई है। और अब बात मध्य प्रदेश की। इंदौर में 3 माह 4 दिन की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। केंद्र सरकार ने पॉस्को कानून में जो बदलाव किया है, उसके बाद देश में यह ऐसा पहला फैसला है जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई है। इंदौर का यह मामला थोड़ा सा अलग है, जिसमें हर रोज 7-7 घंटे की सुनवाई की गई और 23वें दिन ही फैसला सुना दिया गया। सुनिए शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
इंदौर का यह मामला अपने आप में कई तरह से अलग है। इसमें जज वर्षा शर्मा ने 7 दिन तक 7-7 घंटे केस को सुनकर पूरी सुनवाई 21वें दिन पूरी की और 23वें दिन फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने जिस तरह जघन्य और क्रूरतापूर्वक कृत्य किया है, उसे देखते हुए अपराधी को अधिकतम दंड देना उचित है, ताकि समाज में ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। घटना इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र की है, जहां यह बच्ची अपने माता पिता के साथ 20 अप्रैल को सो रही थी। आरोपी सुबह 4 बजे बच्ची को उठाकर ले गया और उसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। बच्ची का शव करीब में एक बेसमेंट से मिला। बच्ची का शव मिलने के 5 दिन में चालान तैयार कर 8वें दिन उसे पेश कर दिया गया। इस मामले में कुल 29 लोगों की गवाही की गई। जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया,
न्यायालय ने इसमें विशेष टिप्पणी की कि ये 3 महीने और 4 दिन की बच्ची का ये के साथ किया गया कृत्य था, और ये इसमें पिशाची प्रकृति के अमानवीयता की हद पार इस आरोपी ने उस अपराध को करने में करी, और ये इसका समाज पे अगर इसको दंडित नहीं किया गया, समाज पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया।
कोर्ट ने आरोपी को दोहरी फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने रेप के मामले में धारा 376 का के तहत फांसी की सजा, हत्या के मामले में धारा 302 के तहत फांसी की सजा और ₹5,000 जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई है। फैसले के बाद बच्ची के माता पिता अभियुक्त के लिए जल्द से जल्द फांसी चाहते हैं।
सब अभी यही बोल रहे हैं, जल्द से जल्द उसको फांसी चाहिए। ऐसे कोई के संग में घटना नहीं हुई है।
सामाजिक कार्यकर्ता रोली शिवहरे का मानना है कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार को लोगों के बीच जागरूकता लाने की जरूरत है। वो कहती हैं,
इस तरीके से सरकार को मुझे लगता है कि मतलब कानून तो है, मतलब सफिशियंट कानून है, ICC में भी है और निर्भया के बाद काफी सारे कानून बन गए हैं, पर उसके बाद ना मतलब आफ्टर ना तो इम्प्लीमेंटेशन का एक तो प्रॉब्लम है, और दूसरा मुझे लगता है कि मतलब शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि जब तक आप जेंडर को लेकर लोगों को अवेयर नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी तो आपके लिए लड़की बोझी है ना, अभी भी आप लड़की को एक वस्तु ही समझते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टीवी जिस प्रकार से चीजें कर रहा है, ना आपका उसमें रोक है, ना आपका इंटरनेट पे रोक है, आपका किसी चीज में, और इसका अनएम्प्लॉयमेंट है। मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि मतलब आदमी करेगा तो क्या करेगा।
वहीं कोर्ट के फैसले का स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है।
ऐतिहासिक फैसला है। मन में ये तकलीफ तो सदैव रहेगी कि बेटी के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अब मन में ये संतोष है कि ऐसे दरिंदे को रिकॉर्ड समय में फांसी की सजा हुई है। अपराधियों के दिल में जब तक खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक वो डरेंगे नहीं अपराध करने में, उसने मध्य प्रदेश विधानसभा ने विधेयक पारित किया था कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। आज मन में इस बात का संतोष है कि ऐसे दुराचारी को फांसी की सजा मिली है।
यह फैसला आ जाने के बाद अब यह मामला हाईकोर्ट जाएगा। अगर हाईकोर्ट भी सजा को बरकरार रखता है तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं बदलता है तो आरोपी राष्ट्रपति के पास दया की अपील कर सकता है। शुरहनिया, ZBBC न्यूज, भोपाल।
पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज की बेटी मुनीजा हाशमी को कथित तौर पर उनके हालिया भारत दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। मुनीजा हाशमी के मुताबिक उन्हें दिल्ली में 10 से 12 मई के बीच एशिया मीडिया समिट के 15वें अधिवेशन में हिस्सा लेना था। उनका कहना है कि जब वो पाकिस्तान से दिल्ली पहुंची तो आयोजकों ने उन्हें भाग नहीं लेने दिया। हमारे सहयोगी अनंत प्रकाश ने मुनीजा से संपर्क साधा। मुनीजा ने न सिर्फ हाल ही की इस घटना के बारे में जानकारी दी बल्कि और विषयों पर, खासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी दिल खोलकर बात की। उनसे पूछा गया कि जब आप भारत आई थी तो आखिर हुआ क्या था।
मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था जिसका टाइटल है एशिया मीडिया समिट। ये 15वीं कॉन्फ्रेंस थी। मैंने इसके कुछ 13-14 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया हुआ। ये पहली कॉन्फ्रेंस थी जो भारत में हुई थी और मुख्तलिफ मुल्कों में होती थी। और इसकी जो ऑर्गेनाइजर थे हैं वो है एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड डेवलपमेंट। ये मलेशिया में बेस्ड एक कंपनी है। उन्होंने मुझे दावतनामा दिया और मैंने अग्री किया और मैं फिर आई। और उसका लोकल होस्ट आमतौर पे जिस मुल्क में ये होस्ट की जाती है, लोकल मुल्क जो होता है वो उसका लोकल होस्ट होता है, उनकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो उनकी डिपार्टमेंट होते हैं। तो मैं इसलिए आई थी। मुझे जब मैं आई, मुझे उन्होंने कहा था आप बोलेंगी, मेरा एक सेशन था, मुझे 4 दिन का होटल में रहना था। मैं जब रिसेप्शन पे पहुंची ताज पैलेस, तो मुझसे कहा गया आपका कमरा नहीं है। मुझे आके ऑर्गेनाइजर्स ने जो AIBG के थे उन्होंने कहा कि जी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी, आप सेशन में नहीं बोलेंगी, आप कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगी। और फिर उन्होंने मुझे बड़े तरीके से तमीज से ये कहा कि आप तशरीफ ले जाइए, आपके लिए हमने कोई और होटल में बंदोबस्त किया है और आप समिट में भी और कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा नहीं ले सकते। आप वहाँ बैठ के एज ए स्पेक्टेटर भी नहीं बैठ सकते क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया है। तो मुझे फिर वहाँ से रॉयल पैलेस में ले जाया गया अशोका रोड पे और मैं वहीं रही 2 दिन। और मैंने फिर जाहिर अपना दौरा कम किया और मैं वापस पाकिस्तान आ गई।
एक चीज बताएं कि इस घटना के बाद आयोजकों की ओर से आपके कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि आप उन्हें आपके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करना पड़ा?
जी नहीं, मैंने उन्हें एक सवाल जरूर पूछा था जब ये गुफ्तगू हो रही थी मरीन से, AIBD से। मैं तो उन्हीं की मेहमान थी ना, तो उन्हीं से बात कर रही थी। मैंने पूछा कि जी ये क्यों हो रहा है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। मैंने कहा ये जरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं मेहमान हूँ, मुझे आपने बुलाया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो खामोश रहे। और फिर ये ऐसा मौका बन गया था कि सिवाय इसके कि बदमजगी और बढ़ जाए। तो जब आप किसी घर जाते हैं और वो कहते हैं आप चले जाएं, तो फिर आप चले जाते हैं ना। तो फिर मैं निकल गई वहां से और फिर मैंने उस तरफ का रुख ही नहीं किया।
मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आपको हुकूमत हिंदुस्तान से क्या कहना है?
मैं फैज की बेटी हूँ और फैज साहब ने हमेशा अमन की बात की, प्यार की बात की, ह्यूमनिज्म की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की। हमेशा ये कहा कि हम दिल कुशादा रखते हैं, हमारा दिल खुला है। तो मैं बहसियत फैज की बेटी थी और फैज फाउंडेशन ट्रस्ट के आज भी ये कहती हूँ, हमारा दिल खुला है और हम अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में, दोनों देशों में अमन हो, मोहब्बत हो और एक दूसरे की बात सुनने की हिम्मत हो, कहने की भी और सुनने की। तो इस किस्म की जो छोटी बात हो जाती है तो फिर थोड़ा सा दिल खराब हो जाता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हौसला रखें, हिम्मत रखें, दोस्ती बढ़ाएं, इससे दोनों मुल्कों का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा।
आपने कहा कि फैज साहब ने अमन के बारे में लिखा है, गरीबों के बारे में लिखा है, क्रांति के बारे में लिखा
हमेशा
है।
जी हमेशा।
आप इस समय जो दोनों मुल्क हैं जिस तरह के सियासी हालातों से गुजर रहे हैं, क्या आपको फैज साहब की कोई नज्म या गजल याद आती है?
उनकी हर गजल और हर नज्म का यही आखिर में बेटा पैगाम होता है कि उम्मीद का दामन न छोड़ो, लंबी है गम की शाम मगर शाम की तो है। तो मैं तो यही कहूंगी कि उम्मीद सहर की बात सुनो, हर चीज को उम्मीद के ऊपर रखो। बुरे वक्त भी आते हैं, अच्छे वक्त भी आते हैं, तो मैं समझती हूँ दोनों देशों की जो लोग हैं, जनता है, उन्हें उम्मीद का दामन रखना चाहिए और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट खुला रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमन होगा, दोस्ती बढ़ेगी। फैज का भी यही पैगाम है, फैज फाउंडेशन ट्रस्ट का भी यही पैगाम है और बहसियत एक माँ मेरा यही पैगाम।
मैम एक चीज बताएं कि आज सोशल मीडिया से लेकर भारत और से लेकर पाकिस्तान तक फैज के जो नज़में थी फैज साहब की वो नारों में तब्दील हो गई हैं ऐसे, लेकिन राजनेताओं से लेकर छात्र नेताओं तक उनके आदर्शों के प्रति समर्पण की भावना किस तरह की है?
देखिए ये जरूर है कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, ये जरूर है, ये स्लोगन बन गए हैं। अगर आपका ये मतलब है, हम देखेंगे लाजे में, हम भी देखेंगे ऐसा कि ये कुछ जो है माशाल्लाह इनके कुछ ऐसे शेर हैं वो जरूर स्लोगन बन गए हैं। लेकिन ये जरूरी है कि उनका जो पीछे इनके जो पैगाम है, इसके बाद जो पैगाम है उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी जानना चाहिए, इसको सिर्फ स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फैज साहब ने अपने जो बातें की हैं, जो लिखा है, दिल से लिखा है और बहसियत इंसान लिखा है। और आप देखें ये कुछ उनको आज फौत हुए हुए उनको गुजरे हुए 35-34 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी बातें ऐसी होती हैं जैसे लगता है आज ही के लिए लिखे हैं। तो एक शख्स जो इतना फ्यूचर में देख सकता हो, इतना समझ सकता हो कि देखो ये आज की बात नहीं है, ये और आगे 3-4-50 साल की बात है, तो मेरे ख्याल में हमें भी यही सोचना चाहिए कि आज जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हुआ मेरे साथ जो भी हुआ, चलो छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर ये हुई तो इसका फिर आगे देखें, इसके असर बहुत बुरा होगा। तो ये पहले कोई एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए।
मैम एक बार शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा था कि विभाजन के दौरान वो फैज को ले जाएं, वो सबको ले जाएं, लेकिन भारत से फैज को, हिंदुस्तान से फैज को कोई नहीं ले जा सकता। और आप देख रही हैं कि आज भी भारत में करोड़ों उनके चाहने वाले हैं, युवा हैं।
बेशक
सवाल मेरा ये है,
मैं सिर्फ इतना कहूंगी फैज हमारा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया का है। फैज बिलोंग्स टू द वर्ल्ड और उसमें भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा।
मैं ये पूछ रहा था कि जब एक समय था जब पाकिस्तान में फैज की नज़में को बोलना भी मना था एक तरह से,
जी,
तो वो पाकिस्तान में जनरल जियाउल्लाह का दौर हुआ करता था।
जी, बिल्कुल।
और उन्हें फैज साहब को जनरल जियाउल्लाह के राज में पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ा था, उन्हें 4 साल तक बेरूत में निर्वासन में अपना जीवन गुजारना पड़ा। लेकिन आज के पाकिस्तान में फैज साहब को आप कहाँ पाती हैं?
मैं तो ये कहूंगी कि फैज साहब को कमाल की बात है कि दिन ब दिन, ये मैं अपनी जिंदगी की बात कर रही हूँ, दिन ब दिन जितना मैं यहाँ बढ़ावा देख रही हूँ उनका, जितना प्यार मैं देख रही हूँ, जितना जो नौजवान है हमारा यंग पीपल वो जितना फैज पढ़ रहे हैं, वो कमाल है। क्योंकि वो ऐसी बातें लिखी उनमें नजर आती हैं, ऐसे पैगाम उनको नजर आते हैं जो उनकी दिल की बात करते हैं और यूँ लगता है जैसे उनके लिए लिखे हुए थे, हालांकि लिखे 50 साल पहले थे। इस वक्त पाकिस्तान में, और मैं खुले दिल से कहती हूँ, फैज पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, फैज के ऊपर रिसर्च हो रही है, PhDs हो रही हैं, और उनको तकरीबन हर शख्स जो चाहे सियासत में हो, चाहे औरत का मसला हो, हर तरह से वो उनकी बातों को या उनकी जो पोइट्री है उनको कोट किया जा रहा है। तो मैं ये फैज को कम होते नहीं, फैज का फैज बढ़ता हुआ देख रही हूँ और इस बात में खुशी होती है क्योंकि उनका जो पैगाम है वो पीस है, वो अमन है, वो प्यार है, वो दोस्ती है। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छा आइन है जिसको हम कहते हैं, खुश आइन बात है, अच्छी बात है कि फैज को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और समझा जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त फैज इज ट्रेंडिंग।
मैम आप कह रही थी कि फैज युवाओं को आंदोलित करते हैं, उनकी गजल है लाजिम है कि हम भी देखेंगे, आज फैज साहब के इंतकाल को इतने बरस बीत चुके हैं, आपको उम्मीद है कि क्या कभी दोनों मुल्कों के युवा आपसी मतभेद भुलाकर अमन के रास्ते पर ले जाएंगे?
जरूर ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा, ये होगा और ये बीच में होता रहता है, टूटता रहता है, होता रहता है, टूटता रहता है। वाजपेयी साहब आए थे ना यहाँ, बस पे आए थे, मैं उस वक्त पीटीवी में थी, मैंने खुद उनका स्वागत किया था वाघा पे, मेरे कैमरे वहाँ खड़े थे, उनको गवर्नर हाउस हम लेके, यानी हमारे कैमरे उनके साथ गए थे। फिर वो मोदी साहब आए थे ना, तो जरूर होगा, ये बस ऊंच नीच होती रहती है और ये होती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ये खुश, ये जरूर अच्छे दिन आएंगे, अमन होगा और ये इसी तरह होगा अगर पीपल टू पीपल डायलॉग खुला रहेगा और अगर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बांटते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो तभी तो ये डायलॉग चलता है ना। अगर आप ब्लॉक कर देंगे उसको या किसी को बोलने से मना कर देंगे, किसी को निकाल देंगे, तो इस तरह तो डायलॉग नहीं चलेगा। तो उस डायलॉग के लिए दिल भी बड़ा रखना पड़ता है। ये फैज का मिसरा है, हम दिल कुशादा रखते हैं, कुशादा मैंने खुला, ये फैज का मिसरा है, तो दिल को खुला रखना चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए कि उसमें लोगों की बात आप सुने और उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि हर बात आपकी मर्जी की नहीं होती, तो लिहाजा आपको वो भी सुननी पड़ती है। ये होगा, अमन आएगा, यहाँ भी आएगा। अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इकट्ठे बैठ सकते हैं, अगर जर्मनी की दीवार टूट सकती है, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों दोस्त नहीं बन सकते, बनेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
आप सुन रहे थे मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की बेटी मुनीजा हाशमी को, जिनका कहना है कि पिछले दिनों उन्हें भारत में एक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। बता दें कि उनके दावे को लेकर भारत सरकार या आयोजकों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अब खेल समाचार सुनाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी।
जी आदर्श, अगर बात आईपीएल की करें तो थोड़ी देर पहले पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थे, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बार फिर से जीत की राह पर वापस लौटी और उसने हैदराबाद को 8 विकेट से मात दी। हालांकि चेन्नई के सामने जीत के लिए 180 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने ये लक्ष्य 19 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल किया। चेन्नई की जीत में चमके अंबाती रायडू, जिन्होंने पूरे नाबाद रहते हुए 100 रन बनाए। उन्होंने केवल 62 गेंदों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के जमाए। और शेन वाटसन भी आज खूब चमके, उन्होंने 35 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए। और उसके बाद कप्तान धोनी के लिए कुछ विशेष करने को नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो 20 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि सुरेश रैना इस बीच 2 रन बनाकर उनका साथ छोड़ गए। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर शिखर धवन के 79 और केन विलियमसन के 51 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 179 रन बनाए। शिखर धवन और केन विलियमसन के बीच 123 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन जिस तरह से शेन वाटसन और अंबाती रायडू ने शानदार बल्लेबाजी की, उनकी दमदार पारियों पर पानी फिर गया। उधर दक्षिण कोरिया में आज से महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले शुरू हुए, जहां आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत के साथ आगाज करते हुए जापान को 4-1 से हराया। भारत की जीत में नवनीत कौर ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए 3 गोल किए। उनकी दमदार हैट्रिक के अलावा अनुपा बारला ने 1 गोल किया। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा मेजबान दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और मलेशिया की टीम शामिल है। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला बुधवार को चीन के साथ होगा। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब आज चीन के लू गांगजू ने अपने नाम किया। वहीं महिला एकल वर्ग का खिताब भी आज चीन के नाम रहा। चीन की काई यानान ने जापान की अयुमी मिने को 21-14, 21-13 से बात दी। और चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें कि थोड़ी देर में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मेजबान मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। थोड़ी देर पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश। और इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आयकर विभाग की चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुमान के मुताबिक चिदम्बरम की $3 अरब की संपत्ति विदेश में है। इंडोनेशिया की पुलिस के अनुसार आज सुबह देश के दूसरे बड़े शहर सुराबाया में तीन चर्चों पर हुए आत्मघाती बम धमाकों में एक ही परिवार के लोग शामिल थे। इन धमाकों में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की बेटी मुनीजा हाशमी को उनके हालिया भारत दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में कथित तौर पर हिस्सा लेने से रोक दिया गया। उत्तर कोरिया की तरफ से अपने परमाणु परीक्षण केंद्र को नष्ट करने की घोषणा के बाद कई देशों ने इसका स्वागत किया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बहुत ही समझदारी भरा और अनुकूल कदम बताया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया मानसी दास ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।